आशीष आयशा को पैसे लेने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। उसने आयशा को ये सच्चाई बता दी थी कि वो मालविका की बेटी है। इस सच्चाई को छुपाने के लिए वो हर महीने आयशा से पैसे लेता था। इस बार आयशा को पैसे देने में देरी हो गई थी, इसलिए वो उसे ये धमकी दे रहा था कि वो अगर उसे पैसे नहीं दे पाई तो आशीष सच्चाई जाकर इशिका को बता देगा। इस बीच इशिका आ गई थी और उसने आशीष की कुछ बातें सुन ली थी। इशिका ने अंदर आते ही आशीष से सच्चाई जाननी चाही। इशिका के अचानक आ जाने की वजह से आयशा घबरा गई थी। उसने आशीष की तरफ देखा। आशीष उसे बताने के लिए मुंह खोलने वाला ही था कि तभी उससे पहले आयशा बोल पड़ी। वो इशिका को घूरते हुए बोली, तुम हमारा पीछा कर रही हो, हमारी बातें सुनना चाहती हो क्या तुम? क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम चोरी छुपे यहाँ कर क्या रही हो? इशिका इशिका की चाल को अच्छे से जानती थी। वो उसकी बात काटते हुए बोली, मुझे घुमाने की कोशिश मत करो, मैंने सब सुना है, ये किसी सच्चाई की बात कर रहे थे। अंकल, आप मुझे बताइए कि आप कौन से सच्चाई बताना चाहते हैं मुझे? इशिका को कहीं ना कहीं अंदर से फीलिंग आ रही थी कि ये सच्चाई उसी से जुड़ी हुई है। इशिका इशिका को अच्छे से जानती थी। उसी का फायदा उठाते हुए उसने आगे कहा, आप मुझे बताइए, इसके बदले आप जितने पैसे चाहेंगे मैं आपको दूंगी। पैसों का नाम लेते ही आशीष के चेहरे पर चमक आ गई। वो जल्दी से बोला, अच्छा बताओ, तुम इसके लिए मुझे कितने पैसे दे सकती हो? कुछ भी कहने से पहले इशिका ने आयशा की तरफ देखा, जो घबराई हालत में वहां खड़ी थी। खुद की नर्वसनेस को काबू करने के लिए उसने अपने कपड़ों को कसकर पकड़ा हुआ था। इशिका ने फिर आशीष की तरफ देखकर सख्ती से कहा, जितने पैसे आप चाहो मैं दे सकती हूँ, मैं राजवंश फैमिली से ले लूंगी, आप जानते हो ना आजकल वो मेरी बहुत परवाह कर रहे हैं। आशीष को पैसे ही चाहिए थे। उसने एक नज़र आयशा की तरफ देखा, जो आंखों ही आंखों में उसे चुप रहने के लिए कह रही थी। आशीष ने ईविल स्माइल दी और बोला, मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास आयशा जितने पैसे होंगे। आशीष ने आयशा का साथ दिया था। ये देखकर आयशा ने उसे तुरंत चुप कराते हुए कहा, अंकल आप थोड़े दिन इंतजार कीजिए, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको पैसे दे दूंगी, फिर आपको इससे मांगने की क्या जरूरत है, आप जाइए यहां से, मैं भिजवा दूंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं, आशीष ने सिर हिलाकर कहा और हंसते हुए वहां से चला गया। आशीष के जाने के बाद आयशा ने एक नज़र इशिका की तरफ घूर कर देखा और फिर बिना कुछ बोले वहां से चली गई। इशिका उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और दिशांक को मैसेज करते हुए लिखा, आशीष दास के पीछे किसी को भेज दो, उसकी हर एक मूवमेंट पर नजर रखना। ठीक है बॉस, मैं अपने आदमियों को लगा देता हूँ, दिशांक ने तुरंत रिप्लाई दिया। उसके बाद दिशांक ने आगे मैसेज करते हुए कहा, एक बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी हो रही है, मैंने आपको इन्विटेशन मेल कर दिया है, आप वहां जाने वाली है क्या? नहीं, इशिका ने जवाब में इतना ही लिखा। इशिका को इस तरह की पार्टी अटेंड करना पसंद नहीं था। मैसेज करने के बाद जब वो वापस अंदर की तरफ आने लगी तो उसे आयशा दिखाई दी। इशिका आयशा के पास गई और उससे सख्त आवाज में बोली, अगर तुम नहीं चाहती कि लोगों को तुम्हारी सच्चाई पता चले तो तुम्हें शांत रहना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं आशीष अंकल और तुम्हारे बीच में जो खिचड़ी पक रही है उसके बारे में पता नहीं लगा पाऊंगी? इशिका, तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आयशा ने अनजान बनते हुए कहा। इशिका ने सिर हिलाया और आयशा की आंखों में देखते हुए कहा, सिंघानिया फैमिली की इकलौती बेटी हो तुम और तुम्हारे पास पैसों की कमी है, ऐसा कौन सा राज है आयशा जिसे छुपाने के लिए हर महीने तुम्हें आशीष अंकल को पैसे देने पड़ रहे हैं? इशिका सब कुछ पता लगाती या आगे कुछ पूछती उससे पहले आयशा ने जल्दी से कहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम, मैं कोई राज नहीं छुपा रही हूँ। आयशा ने तुरंत ही खुद के चेहरे के भाव सख्त किए और इशिका को उंगली दिखाते हुए बोली, इशिका बेहतर होगा कि तुम अपने फ्यूचर पर ध्यान दो, मेरा फ्यूचर तो सेटल्ड है, आगे से मेरे रास्ते में मत आना। आयशा अपनी बात कहकर वहां से जाने को हुई तभी इशिका ने कहा, मालविका कहाँ है? वो तुम्हारी माँ है तो तुम्हें पता होगा, मैं कौन सा उनके आगे पीछे घूमती रहती हूँ, आयशा ने गुस्से में चिल्ला कर कहा। मालविका का नाम लेने पर आयशा भड़क गई थी। वो इस सच को जानती थी कि मालविका ही उसकी असली माँ है, लेकिन उसने मालविका को ये बात जाहिर नहीं होने दी। अगर आयशा उसे कुछ बताती और ओवर इमोशनल होकर मालविका कोई गलती करती तो वो पकड़ी जाती। आयशा ने एक नज़र गुस्से से इशिका को देखा और फिर वहां से चली गई। आयशा का पीछा करते हुए इशिका राधिका के कमरे तक पहुंची। उसने झांक कर देखा तो मालविका वहां नहीं थी। इशिका राधिका को परेशान नहीं करना चाहती थी तो वो वापस आ गई। पूरे हॉस्पिटल में ढूंढने के बाद भी इशिका को जब मालविका नहीं मिली तो मजबूरन उसे मालविका को कॉल करना पड़ा। उसने मालविका के कॉल रिसीव करते ही पूछा, कहाँ हो तुम? मालविका ने घबराई आवाज में कहा, इशिका तुम क्या करने का सोच रही हो? मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ आओ और आकर मिस्टर राजवंश से माफी मांगो, इशिका ने सीधे सीधे कहा। मालविका उस पर तुनक कर बोली, मैं किसी से माफी नहीं मांगने वाली हूँ, तुम मिस्टर राजवंश को अच्छे से जानती हो, मैंने उनके बारे में सुना है कि वो अपने दुश्मनों को इतनी आसानी से नहीं जाने देते। तुम मेरी बेटी हो तो जाकर उनसे माफी मांगो, अपना बेटी होने का फर्ज निभाओ, वो तुम्हें माफ कर देंगे। मालविका अभी भी इशिका को ही आगे करना चाहती थी। इशिका से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो सख्त आवाज में बोली, जितना कहा है उतना करो, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर मुझे मत कहना कि इस छोटे से मामले में पुलिस कैसे इन्वॉल्व हो गई। इतनी सी बात के लिए तुम पुलिस को बीच में लेकर आओगी? तुम अच्छे से जानती हो कि मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैंने वो सूप तुम्हारे ऊपर फेंका था। माँ बाप को अपने बच्चों को मारने का हक होता है, मालविका ने बेशर्मों की तरह कहा। पूरी बात सुनने के बाद इशिका ने एक बार फिर वार्निंग देते हुए कहा, तुम्हारा निशाना चाहे जो भी रहा हो, लेकिन तुमने मिस्टर राजवंश को नुकसान पहुंचाया है। अगर उन्होंने इस मामले में कुछ किया तो मैं उन्हें रोक नहीं पाऊंगी। बेहतर होगा अपनी गलती मान लो और सॉरी बोलो। इशिका की बातें सुनकर मालविका और भड़क गई थी। वो चिल्लाकर बोली, तुम तो हो ही थैंकलेस इंसान। मुझे पहले पता होता ना कि तुम ऐसी निकलोगी तो तुम्हारे पैदा होते ही मैं तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ाती या फिर किसी इंसान को बेच देती। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी माँ को धमकी देते हुए। इशिका ने मालविका की एक भी बात नहीं सुनी और कॉल कट कर दिया था। वो जानती थी कि गुस्से में मालविका फिर से उसे ही भला बुरा कहेगी। कॉल कट होते ही इशिका ने कहा, अगर मेरी बात होती तो फिर भी जाने देती। बात यहां अभिमन्यु की है और इतने सस्ते में तुम्हें नहीं जाने दूंगी मैं मालविका दास। इशिका की आंखों के सामने बार बार वही लम्हा आ रहा था जब वो अभिमन्यु के पीठ पर दवाई लगा रही थी। वो उसे बचाने के लिए बुरी तरह जल गया था। इशिका ने पुलिस को कॉल किया और मालविका को अरेस्ट करवा दिया था। गवाही के तौर पर सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल हुआ था। मालविका को उसके किए के लिए एक हफ्ते की जेल और अभिमन्यु के मेडिकल का खर्चा उठाना था। हालांकि राजवंश फैमिली के लिए उसके दिए पैसे मैटर नहीं करते थे, पर मालविका जेल में थी और इशिका ने उसके किए की सजा दे दी तो वो भी सुकून में थी। उसने अकेले ही पूरा मामला संभाल लिया था। पूरा मामला निपटने के बाद इशिका वापस कमरे में पहुंची। अभिमन्यु वहां नहीं था। उसे इधर उधर देखता हुआ पाकर वसुधा ने कहा, वो शैतान लड़का बाहर गया हुआ है, उसने बोला कि उसकी कोई मीटिंग है।
इशिका कुछ पल चुप रही, फिर वो वसुधा के सामने जाकर नजरें झुकाकर बोली, दादी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आज मेरी वजह से वो सब हो गया। अनजाने में ही सही, लेकिन अभिमन्यु को मेरी वजह से हर्ट हुआ था। वसुधा ने इशिका के गाल पर प्यार से हाथ रखकर कहा, तुम माफी मत मांगो, हम एक फैमिली है, ऊपर से तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उल्टा मुझे तो अच्छा लग रहा है जब वो लड़का तुम्हें बचाने के लिए आगे आया और खुद को घायल कर लिया। उनकी बातें सुनकर इशिका की आंखें नम होने लगीं। वसुधा ने उसे अपनी फैमिली माना था, बहुत दिनों से उसने ये शब्द सुना था। इशिका अकेली थी, कहने को उसकी माँ थी, लेकिन मालविका ने उसे कभी अपना परिवार नहीं समझा और ना ही सिंघानिया फैमिली ने। इशिका ने उनकी बात पर सिर हिलाया और फिर वसुधा से बातें करने लगी। वहीं आशीष के आ जाने के बाद आयशा काफ़ी घबरा गई थी। उसने अपना एक ब्रांडेड बैग बेचकर लगभग 2 लाख रुपये हासिल किए और उसे आशीष को भेज दिए। पैसे भेजने के साथ ही आयशा ने उसे एक मैसेज किया था। उसने लिखा, आगे से अपना मुंह बंद रखना, वरना हम दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होगा। तुम चिंता मत करो भांजी, तुम्हारा मामा बहुत होशियार है। हालांकि मुझे नहीं पता है कि तुम ज़्यादा अमीर हो या फिर इशिका, पर फिर भी ये जानता हूँ कि मुझे किसका साथ देना है, आशीष ने जवाब दिया। आज जो भी हुआ था उसके बाद से आयशा काफ़ी परेशान थी। उसने मन ही मन कहा, इस आदमी का मैं भरोसा नहीं कर सकती हूँ, ये पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बस एक बार मेरी और नक्श की शादी हो जाए, तब तक ये राज बाहर ना आए। शादी के बाद क्या फ़र्क पड़ता है अगर किसी को पता भी चल जाए कि मैं मालविका दास की बेटी हूँ। आयशा परेशानी में हॉस्पिटल के गार्डन में चहलकदमी कर रही थी, तभी नक्श वहाँ उससे मिलने के लिए आया। उसे देखते ही आयशा की टेंशन खत्म हो गई। वो नक्श के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, नक्श तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे? नक्श ने सीरियस चेहरे के साथ कहा, मुझे डॉक्टर मर्चेंट के बारे में बात करनी है। तुमने उनके साथ सब कुछ फिक्स तो कर लिया है ना? इशिका से आज बात होने के बाद से ही नक्श घबरा गया था। डॉक्टर मर्चेंट का पूछने पर आयशा हड़बड़ा गई थी, फिर भी उसने अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल में करके मुस्कुरा कर कहा, हाँ बिल्कुल सब सेट है। ठीक है फिर, तुम मेरी मिस्टर मर्चेंट के साथ एक मीटिंग फिक्स करवाओ, मुझे उनसे फेस टू फेस बात करनी है, नक्श ने जवाब दिया। आयशा उनकी मीटिंग फिक्स नहीं करवा सकती थी क्योंकि अभी तक डॉक्टर मर्चेंट ने काम करने के लिए हाँ नहीं कहा था। उसने बहाना बनाते हुए कहा, डॉक्टर मर्चेंट अभी किसी काम से अब्रॉड गए हुए हैं, तुम तो जानते हो कि वो बहुत बिजी रहते हैं। जब वो आ जाएंगे तब मैं तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवा दूंगी, वो मेरे टच में है, तो तुम ऐसा करो कि तुम्हें उनसे जो भी पूछना है वो तुम मुझे भेज दो, नक्श ने बौहें उठाकर कहा। मैंने अपनी सभी क्वेरीज तुम्हें मेल कर दी हैं, तुम अभी उन्हें डॉक्टर मर्चेंट से पूछो, मुझे उनका हल किसी भी हाल में चाहिए। ठीक है फिर, मैं अभी उन्हें भेज देती हूँ, आयशा ने जवाब दिया। आयशा ने मेल भेजने के बाद कहा,
तुम चिंता मत करो, डॉक्टर मर्चेंट मेरे मेल्स का जवाब तुरंत देते हैं, तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। वहीं इशिका वसुधा के पास वीवीआईपी वार्ड में बैठी हुई थी जब उसका फोन वाइब्रेट हुआ। इशिका ने तुरंत मेल को चेक किया तो उसने देखा कि राधिका ने उसे मेल किया है। डॉक्टर मर्चेंट, क्या आप मेरी इन मैटर्स में हेल्प कर सकते हैं, मेल में लिखा हुआ था। इशिका ने उसके साथ अटैच की हुई फाइल को देखा तो उसके चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल आ गई। उसे देखते ही इशिका समझ गई थी कि ये आयशा ने किया है। जो समस्या उसने भेजी थी उसी पर वो राजवंश एम्पायर में काम कर रहे थे। इशिका ने तिरछा मुस्कुराते हुए मेल का जवाब भेजा। वहीं जब तुरंत मेल का रिप्लाई आया तो आयशा के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो बोली, देखा मैंने कहा था ना, डॉक्टर मर्चेंट तुरंत मुझे जवाब देते हैं, तुम खामखा परेशान हो रहे थे। आयशा की बातों से नक्श को थोड़ी राहत मिली, लेकिन जैसे ही उसने मेल खोला आयशा के चेहरे का रंग उड़ गया था। कोई आइडिया है कि इशिका ने जवाब में क्या लिखा है? जो भी लिखा हो, लगता है आयशा के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।